Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Na jayate mriyate va vipaschin nayam kutaschin na babhuva kaschin अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। आचार्ययम् बालक नचिकेता के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बालक नचिकेता ने प्रश्न करते समय आत्म तत्व के विषय में कहा था, धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् पश्यसि तद्वद। आत्म तत्व धर्म से परे हैं, अधर्म से परे हैं, कार्य कारण से परे हैं, काल से परे हैं। ऐसा आत्मतत्व आप मेरे को कहिए। धर्म और अधर्म से अलग माने वो धर्मजन्य नहीं है, न क्रिया है अथवा न क्रियाजन्य फल है। धर्म क्रिया प्रधान होता है, सर्व कामो एजेत आदि जो भी यज्ञ हैं वो क्रिया प्रधान है। देवत्वोद्देशेन द्रव्य त्यागो यज्ञ और यज्ञादिरेव धर्म। अब आदि शब्द से आप बहुत सारी क्रियाएं ले लीजिए तो आत्मतत्व यज्ञात्मिका क्रिया नहीं है और यज्ञ जन्य जो स्वर्गादि फल है वो भी नहीं है। ये धर्मात अन्यत्र का अर्थ है, क्रिया नहीं और क्रियाजन्य फल नहीं। और इसी का विस्तार किया उत्तर के रूप में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूय, कि वो अज हैं। न जायते जो वस्तु पैदा होती हैं वो क्रियाजन्य होती है, जो भी वस्तु पैदा होती हैं वो क्रियाजन्य होती हैं और स्वयं वो क्रिया का आधार होती है। क्रियाजन्य क्रिया का यदि आधार न बने तो उस वस्तु में कोई विक्रिया संभव नहीं है। वस्तु क्रिया से जन्य हो और क्रिया का आधार हो तभी उसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि वस्तु में क्रिया से जन्य क्रिया पैदा हो जाती है तब वो किसी विकार को प्राप्त होने की योग्यता उसमें आ जाती है। जैसे उदाहरण में आप घड़ा बना रहे हैं, परम पूज्य महाराज श्री ने कहा जैसे आप घड़ा बना रहे हैं तो घड़ा बनाते समय पहले मिट्टी का गोला बना देते हैं और वो मिट्टी का गोला उस चक्के पर रखा जाता है, चक्र पर, जो कुम्हार का चक्र होता है उसके ऊपर गोला रखता है और उसके बाद उसको घुमाता है। तो सर्वप्रथम क्रिया तो उसके हाथों में है, यदि हाथ न हिले कुम्हार के, तो चक्र नहीं हिल सकता है। तो चक्र की जो क्रिया है, घूमना है, वो हस्तजन्य है, हस्तक्रियाजन्य है। पहले उन्होंने हाथ को घुमाया, और हाथ घुमाने की जो क्रिया है वो चक्र में आ गई, चक्र भी क्रिया का आधार बना। हाथ क्रिया का हाथ बना, क्रिया का आधार हाथ बना, और उसके बाद वो चक्र भी क्रिया का आधार बना। उस चक्र में भी अब वो क्रिया होने लगी। अब वो चक्र की जो क्रिया है उस मिट्टी के गोले में न पहुंचे तो मिट्टी का गोला घड़ा कैसे बनेगा। इसलिए वो क्रिया, चक्र की क्रिया उस मिट्टी के गोले में आना बहुत जरूरी है। इसलिए चक्र की क्रिया से जन्य क्रिया हुई, वो क्रिया उस गोले में आ गई। अब उस गोले में भी क्रिया है, वो गोला भी क्रिया का आधार बना। यदि वो गोला मिट्टी का क्रिया का आधार न बने तो वो घड़े के रूप में बदलेगा कैसे। इसलिए कर्ता की क्रिया जब तक कारण में नहीं पहुंचती है, जब तक कारण क्रिया का आधार नहीं बनता, तब तक उसमें विकार संभव नहीं है। दुनिया में जो भी कार्य पदार्थ है, उस कार्य पदार्थ में क्रिया का होना बहुत जरूरी है। आप यहां पर कहते हैं कि वो आत्म तत्व जो आपने बोला, धर्मात अन्यत्र अधर्मात अन्यत्र, वो क्रियाजन्य नहीं है और न क्रियाजन्य फल है। अब इस 19वें श्लोक में आचार्य यम कहते हैं, हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानी तो नायम हन्ति न हन्यते। अब ये बात बहुत ध्यान दे के आप श्रवण करेंगे। मैंने आपको अभी अभी एक नियम बताया था, जो भी वस्तु कार्य होती हैं वो जब तक क्रिया का आधार नहीं बनती तब तक उसका विकास या विकार संभव नहीं है। उसमें क्रिया बहुत जरूरी है। जैसे हम जमीन के अंदर बीज डालते हैं, तो जमीन के अंदर बीज डालने के बाद भूमि का संयोग, जल का संयोग उस बीज के साथ हो जाता है, और उसके बाद फिर उस बीज में भी क्रिया होना शुरू हो जाती है। वो जो जलीय संयोग है वो बीज को फुलाता है, और उसके अंदर एक गर्मी होती है जमीन के अंदर, तब जाकर के उसके अंदर क्रिया बनती है, और वो क्रिया उसमें विकार पैदा करती है, उसके ऊपर के आवरण को तोड़ती हैं, और उस आवरण को तोड़ के अंकुर पैदा हो जाता है। तब वो बीज भी क्रिया का आधार बना, और वो जो अंकुर पैदा होके उठने लगता है तो वहां पर भी क्रिया है। वस्तु यदि क्रिया का आधार न बने तो उस वस्तु में विकार या विकास संभव नहीं है। अब आत्मतत्व के संदर्भ में हम सोचे, हंता चेन मन्यते हंतुम, आचार्य यम कहते हैं कि आत्मतत्व न जन्मता है न पैदा होता है, उसी को विस्तार दे रहे हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं मारूंगा, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं मरूंगा, कोई सोचता है कि मैं मारने वाला हूं, कोई सोचता है कि मैं मरने वाला हूं। तो आचार्य यम कहते हैं कि आत्म तत्व न मारने वाला है और न मरने वाला है। तो उसको मारने वाली कितनी चीजें हैं। मारने वाली नारायण हमारे पास सबसे मजबूत चीजें हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। आप आकाश तत्व भी ले लीजिए, ये पांच भौतिक शरीर हैं। अब हम लोग विचार करते हैं कि मरण क्रिया या मारण क्रिया का प्रभाव आत्मसत्ता पर संभव है कि नहीं। मैंने आपको सूत्र बताया, ये आप याद रखोगे कि जब तक उस वस्तु में क्रिया ना हो तब तक उस वस्तु को मारना ही संभव नहीं है, ना उसको आप पैदा कर सकते हैं। यदि वस्तु में क्रिया ना हो तो न उसको आप पैदा कर सकते हैं और न उसको आप मार सकते हैं। और आप बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं तो पैदा होना और मारना या मरना, मिटना, विनष्ट होना, ये कोई अलग क्रिया नहीं है, ये एक देखने का ढंग है। जिसको आप जन्म बोलते हैं, जिसको आप मृत्यु बोलते हैं, ये दोनों भी क्रियाएं हैं। लेकिन किसी क्रिया को आप जन्म बोलते हैं और किसी क्रिया को आप मरना बोलते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। आप किसको विकास बोलते हैं और किसको विनाश, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है। परम पूज्य महाराज श्री ने सुंदर दृष्टांत दिया, बहुत मजेदार दृष्टांत। कोई व्यक्ति बकरी की पूजा कर रहा है और बहुत अच्छी तरह से मंत्र बोल के तांत्रिक रूप से पूजा कर रहा है, उसको तिलक लगा रहा है, उसको माला पहना रहा है और उसको कुछ खिला भी रहा है, उसको चना खिला रहा है, दाल खिला रहा है और उसको प्रणाम भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है? आप उसको पहले की क्रियाओं को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो जो बकरा जी समझदार होगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको भी तो दाल खिलाई जा रही है, उसके गले में माला डाली जा रही है, उसके पीठ पर हाथ फेरा जा रहा है। उसकी जो क्रिया है, आप उस क्रिया को क्या कहेंगे? क्या उस आदमी को ये बोलेंगे कि वो कितना दयालु है? वो आदमी कितना दयालु है कि उसको माला पहनाया, तिलक लगाया, उसको दाल खिलाई, पीठ पर हाथ फेरा, थपथपाया, ये सारी क्रियाएं होती है, और उसके बाद उसने उसको मार दिया, तो आप क्या कहेंगे? उसकी वो दया कहेंगे? आप उसको किस रूप में लेंगे? कितना दयालु व्यक्ति है, आप ऐसा बोलेंगे? वो दया नहीं है, आपका दृष्टिकोण क्या है, देखने का दृष्टिकोण क्या है। वस्तुतः वो जो क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं वो मृत्यु का कारण है, वो मारने की प्रक्रिया का अंग है, वो बाहर नहीं है। लेकिन आपका देखने का दृष्टिकोण ये पूजा है, आप बोलते हैं पूजा है, उसका संवर्धन है, और उसको क्रिया जो है मारने की क्रिया है, लेकिन वो मारने की क्रिया का अंग क्रिया है, वो उसके बिना वो नहीं कर सकता है, वो पूजा करना है, उसको बलि चढ़ाना है। तो ये क्रिया जो है जिसको आप विकास कहते हैं और जिसको आप विनाश कहते हैं, ये आपके दृष्टि पर निर्भर है। जैसे उदाहरण में कोई मकान गिर रहा है, व्यक्ति गिरा रहा है, मकान गिरा रहा है, क्योंकि उसको बहुत बड़ा मकान बनाना है, तो आप उसको क्या कहेंगे? विनाश कहेंगे कि विकास कहेंगे? बहुत बड़े बड़े बुलडोजर आपने लगाया और बहुत क्रूरता से अपने सारे मकान को तहस नहस कर दिया, तोड़ डाला, उसकी दीवारें, उसकी अलमारियां, जो और भी बहुत सारा सामान कीमती था उसमें, उसको भी अपने एकदम तोड़ फाड़ दिया। आप क्या कहते हैं? उसको क्या बोलोगे आप उसको विकास बोलेंगे? और कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई और उन्होंने तोड़ दिया तो आप विनाश बोल देंगे? लेकिन आप उस क्रिया को आप देखना, उस क्रिया को देखना, उस क्रिया में और उस क्रिया में अंतर क्या है, जिसको आप विनाश बोल रहे हैं और जिसको आप विकास बोल रहे हैं, दोनों क्रियाओं में अंतर नहीं, केवल भावना में अंतर है। और मान लो वहीं पर दूसरे लोग खड़े हैं और वो बोलेंगे अरे ये मकान तो रास्ते में था और गवर्नमेंट की स्कीम आई, गवर्नमेंट ने तोड़ डाला, अब ये चौड़ा होगा मकान, रास्ता बहुत चौड़ा होगा, चलने फिरने के लिए बहुत आनंद आएगा। अब वो लोग क्या देखेंगे उसको, वहां मालिक छाती पीटेगा कि विनाश हो गया, विनाश हो गया, हाय हाय मर गया, मेरा मकान टूट गया। और वहीं पर जो बाकी के लोग हैं, ओहो बहुत अच्छा है, अभी रोड बहुत बड़ा बनेगा। अब उसको एक व्यक्ति विकास देख रहा और दूसरा व्यक्ति विनाश देख रहा, तो विकास है कि विनाश, ये दोनों चीजें हमारी दृष्टि पर निर्भर है। हम उसको विनाश समझते हैं कि हम उसको विकास समझते हैं। इसलिए किसी भी विकास के साथ विनाश जुड़ा हुआ है और किसी भी विनाश के साथ विकास जुड़ा हुआ है। कोई मरता है तो दूसरा पैदा होता है, कोई पैदा होता है तो कोई मरता है, बिना मरे पैदा होना संभव ही नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया का आधार बनकर एक बीज अंकुर को पैदा करता है और उसी परिवर्तन की प्रक्रिया का आधार बनकर वो फूल बन जाता है, उसी परिवर्तन की प्रक्रिया का आधार बनकर वो पेड़ बनता है, बहुत बड़ा बनता है, और उसी परिवर्तन की प्रक्रिया का आश्रय लेकर अंत में मिट जाता है। लेकिन आप बहुत तत्व दृष्टि से देखेंगे तो वहां पर एक रस क्रिया है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, लेकिन आप उस परिवर्तन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। किसी परिवर्तन को आप विकास कहेंगे जो हमारे अनुकूल हो, और किसी परिवर्तन को विनाश कहेंगे जो हमारे प्रतिकूल। इसलिए ब्रह्म पूज्य महाराजेश्वरी ने कहा कि यह हमारी दृष्टि है, हम उसको विकास समझते हैं कि हम उसको विनाश समझते हैं। इसलिए कोई आदमी समझता है इसको मैं मार रहा हूं और कोई समझता है कि मैं मर रहा हूं, और ये दोनों क्रियाएं हैं, यहां दोनों क्रियाएं, और दोनों क्रियाओं का जो आधार है वो द्रव्य है। आप ध्यान दें, अब यहां बहुत सूक्ष्म चिंतन करेंगे, हंता चेत हंतुम, एक मारने वाला है और दूसरा मरने वाला, और जो मारने वाला है वो भी क्रिया का आधार है और जो मरने वाला है वो भी क्रिया का आधार है, और जब तक वो क्रिया का आधार नहीं बनेगा तब तक न वो मारने वाला बनेगा और न तब तक वो मरने वाला। इसलिए जहां पर भी आप सुनते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का आधार कर्म है, क्रियाजन्य ये सारा संसार है, भगवान ने गीता श्रीमद् भागवत में कहा कर्मणा जायते जंतु, ये सारी जो सृष्टि है, ये जीव जंतु है, वो कर्मणा जायते, कर्म से पैदा होते हैं। मारने वाला भी क्रिया का आधार है, कर्म का आधार है, और मरने वाला भी, मरने के लिए भी तो क्रिया चाहिए ना, बिना क्रिया वो कैसे मरेगा। नवदीप न्यायिकों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं का वर्णन किया है, एक ऐसी क्रिया जो शब्द को पैदा करती है और एक दूसरी क्रिया बिना शब्द को पैदा किए, संयोग। कभी आपने ध्यान दिया होगा, जैसे कि मान लो दो पदार्थ का द्रव्य रे वो संयोग, वो बोलते कि दो पदार्थ द्रव्य जो है द्रव्यों का संयोग होता है, तो वो जो संयोग है वो दो द्रव्यों में जब संयोग होता है तो दोनों द्रव्य क्रिया का आधार होते हैं। दोनों द्रव्य जैसे दो अंगुलियों का जो संयोग है, ये दोनों द्रव्य हैं और इसको द्रव्य बोलते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, इसको द्रव्य बोलते हैं, नव द्रव्य हैं। और ये जो संयोग होता है वो बोलते कि क्रिया का आधार भी है, और ये संयोग हुआ, ये संयोग हुआ, इसको संयोग संबंध बोलते हैं। अब ये जो संयोग है, ये संयोग शब्द को पैदा कर रहा है कि बिना शब्द को पैदा किए हैं, अब यह आपको कुछ सुनाई दे रहा है क्या? दो अंगुलियां तो मिल गई, लेकिन आपको कुछ सुनाई दिया? ये दोनों अंगुलियां क्रिया का आधार है और उस क्रिया के कारण दोनों में संयोग हुआ है, लेकिन ये संयोग जो हुआ ये शब्द जन्य है, शब्द को पैदा किया हुआ है कि बिना शब्द? बिना शब्द। ये संबंध तो बना लेकिन किसी नए शब्द को पैदा नहीं किया, केवल अंगुली द्वय संयोग। लेकिन वही मैं ऐसे ताली बजा दी, तो मैंने ताली बजा दी तो वहां पर भी क्रिया बनी। ध्यान देना, ये दो द्रव्य हैं और ये आए और आने के बाद ताली बजी, तो ताली का मतलब क्या है? यदि मैं यूं करूं तो आप ताली नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे पक्का। आज यदि मैं यूं बोलूं तो हाथ ही जोड़ा है मैंने, मैंने पहली क्रिया में भी हाथ जोड़ा है और मैंने अभी की क्रिया में भी हाथ जोड़ा है, लेकिन आप दूसरी क्रिया को क्या बोलोगे? आपने ताली बजा दी महाराज, आप ये नहीं कहोगे कि प्रणाम किया है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि एक ने शब्द को पैदा किया और इसलिए उसको बोलते आभिघात। इसको क्या बोलते हैं? आभिघात। आप कभी बच्चे के गाल पर धीरे से ऐसे हाथ लगाओ और थोड़ा सा तो गाल पर आप धीरे से हाथ लगाओगे, संबंध तो हुआ, संयोग तो हुआ, लेकिन उसको चाटा नहीं बोलेगा वो। भैया चाटे में भी तो गाल में हाथ लगता है, लेकिन चाटा किसको बोला जाता है? जहां शब्द को पैदा करे हो। आज भी शब्द यदि पैदा ना हो तो उसको चोट ही नहीं लगी। ध्यान देना, जितना बड़ा शब्द निकले उतनी बड़ी चोट। अब आप धीरे से छोओगे तो कोई शब्द ही पैदा नहीं हो। थोड़ा जोर से मारो और थोड़ा जोर से मारो, आप जितना जोर से मारेंगे, इसलिए आपका वैयाकरण का सिद्धांत निकलता है इसमें से। ये सारे शास्त्र जो है ना कहीं सत्य के करीब होते हैं। दुनिया में जो भी वस्तु पैदा होती है वो कहते कि शब्द जन्य है, इसलिए उन्होंने कहा विस्फोट है ना, शब्द को उन्होंने विस्फोट बोला, स्फोट बोला, स्फोटवाद। अब बस बात वही की वही आई। वो कहते हैं कि किसी वस्तु को पैदा करना हो तो वहां शब्द होता है, वहां क्रिया होगी, क्रिया आपस में टकराएंगे, दो चीजें आपस में जब टकराएगी तो वहां पर शब्द होना अनिवार्य है। और जितना ज्यादा आभिघात होगा, आभिघात दो चीजें जितना ज्यादा आपस में टकराएगी वहां शब्द पैदा होगा, और वो कभी वही शब्द है जो पैदा करता है, वस्तु को पैदा करता है। अरे आप कभी ऐसा पूरा मकान गिर जाए और आपको शब्द ही सुनाई नहीं दे। अच्छा कल्पना करो मकान गिर जाए और कोई उसमें शब्द ही न निकले तो आपको विनाश मालूम पड़ेगा कि नहीं? कभी आपने पिक्चर देखा होगा और उस पिक्चर को महत्वपूर्ण वो चित्र नहीं बनाते हैं, उसकी जो बैक म्यूजिक होती है ना, वो पीछे से जो शब्द होते हैं, जो म्यूजिक होती है, वो उस चीज को बहुत भयानक बना देती है। आप डरते चित्र से नहीं है, आप चित्र से डरते नहीं है, उस चित्र के पीछे जो भयानक शब्द होता है वो शब्द ही आपको रोमांचित करता है और वो शब्द उस पिक्चर के चित्रों को महत्वपूर्ण बनाता है। आप सामान्य कुत्ता आपके सामने से गुजर जाए आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन वही कुत्ता पिक्चर में हो बोलने लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो न्यायिक कहते इतना महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए कहते हैं कि जब आप जो बिग बैंड क्या है वो वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वो इतना बड़ा विस्फोट बहुत कितना बड़ा रहा होगा वो, अरे उस शब्द उस विस्फोट ने भी कई नक्षत्र ग्रह तारों को इधर उधर कर दिया होगा, इतना बड़ा हो शब्द। तो इसको बोलते आभिघात। दो वस्तुएं जब टकराती हैं अथवा उसी वस्तु में जब शब्द होता है तो वो वस्तु जो है किसी न किसी रूप में विकृत हो जाती है, वो संस्कृत हो जाती है, वो विकास को प्राप्त करती हैं, वो विनाश को प्राप्त। वो तो आपका दृष्टिकोण है, अब वो विकास और विनाश की प्रक्रिया आपकी हुई, अब हम लोग विचार करते हैं कि आत्मा को हमको मारना है, किसको मारना है हमको? आत्मा को मारना है। अब आत्मा को मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे बड़ी बात, आप उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। बिना जुड़े, आत्मा के साथ बिना जुड़े आप उसको नहीं मार सकते। मैंने आपको एक सूत्र दिया था, बिना वो क्रिया का आधार बने वस्तु, ना उसको आप मार सकते हैं, ना उसको विकसित कर सकते हैं, ना आप उसको विकृत कर सकते हैं। वहां से जुड़ना, अच्छा आप किसी आदमी को बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, आप उसे बिना जुड़े कैसे बनाओगे? आप बिना जुड़े आप उस व्यक्ति को कैसे मिटाओगे, विकृत कैसे करो? मैंने आपका जो संबंध है, पहली बात, अब आप यहां तीन चीजें ले लीजिए। पहली, कर्ता में क्रिया होनी चाहिए, और कर्ता की क्रिया के द्वारा आपको जिसको मारना है उसके साथ आपको संबंधित होना पड़ेगा। कर्ता की क्रिया और क्रियाजन्य संबंध, आप थोड़े शब्दों पर ध्यान दें। अब इन शब्दों का कोई हिंदी में अनुवाद नहीं है, इन शब्दों को ऐसे बोलना पड़ेगा। पहले कर्ता, कर्ता माने मारने वाला, मारण क्रिया का जो कर्ता है उसके अंदर क्रिया होना चाहिए, क्रिया का आधार बनाओ। और क्रिया का आधार बनकर के अब जिसको मारना है उसके साथ संबंध जोड़ना है, क्रियाजन्य संबंध। क्योंकि बिना संबंध आप अपनी क्रिया उस वस्तु में कैसे देंगे? आपको उसको क्रिया देना है, क्योंकि उसको क्रिया दिए बिना, उसको हिलाए बिना आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कर्ता की क्रिया और क्रियाजन्य उसके साथ संबंध, और संबंध के बाद फिर जिसको मारना है उसमें आपको क्रिया देना है, वो क्रिया का आधार बने। अब जैसे मान लो कि आपको गांव का उदाहरण बता देते हैं, जैसे कि आपको, आप बहुत सुंदर एक आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ के आप आम खाना चाहते हैं, बहुत मीठा आम है वो, और आप जाकर क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत तेज तर्रार पेड़ पर चढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, ऊपर चढ़ जाते हैं, और ऊपर चढ़ करके क्या करते, डाल को पकड़ के हिला देते, और उसकी जो क्रिया है वो कहां पहुंचती है, उस डाल में पहुंचती है। और जब डाल में क्रिया पहुंचती है तो फिर डाल के जो आम है वो नीचे गिर जाते हैं। बात इतनी है, अपने को ऐसा लगता है कि कितनी प्रक्रिया छोटी सी, लेकिन वहां कितनी प्रक्रिया घटी। उस व्यक्ति में क्रिया हुई, उस व्यक्ति ने उसके तने को पकड़ा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, और उसके बाद, अच्छा आप उसके पूरे तने को हिला दे तो आप आम के उस तने को पकड़ो, उसी को हिलाओ, हिलेगा? आपकी क्रिया उसमें जाएगी नहीं, कारण कि बहुत मजबूत है। जब तक उसको हिलाने योग्य क्रिया आपके अंदर ना हो, शक्ति, तब तक आप उसको नहीं हिला सकते हैं।